बीते सुहाने पल हैं जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं।
ओम शांति। पहले मैं ये जानना चाहूंगी फर्स्ट टाइमर्स कौन है। तो आज का दिन कैसा दिन है? हाँ, प्रभु मिलन का दिन है। वो प्रभु जिसको हम 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे, जिसके लिए कह रहे थे हे प्रभु ये अखियां तेरे दर्शन की प्यासी है, तरस रही है। तो इन साकार नैनों से आज हम उस प्रभु से मिलन मनाएंगे, साकार नैनों से उसको देखेंगे। हम जानते हैं कि परमात्मा निराकार है, लेकिन उस निराकार को आज साकार में देखने का बहुत सुंदर अवसर हमें मिल रहा है। उसके लिए कहते हैं उसके पास आंख नहीं है फिर भी देख लेता है, उसके पास कान नहीं है फिर भी सुन लेता है, उसके पास मुख नहीं है फिर भी बोल लेता है। वो कैसे करता होगा? वो किसी का तन उधार ले लेता है और तब वो ये कर पाता है, है ना? तो आज वही दिन है। भल हम बाबा का जब नए आते हैं, कोर्स करते हैं, हम सबको पता है कि बाबा मिलन के दिन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत तपस्या करवाई जाती है। हाँ, कम से कम एक माह एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन हो, खान पान की शुद्धि हो, नियमित मुरली का अध्ययन हो, इस प्रकार से कुछ कुछ बातों का जब हम जीवन में पालन करते हैं तब जाकर ये दिन हमारे भाग्य में नसीब होता है। तो जो पहली बार वाले हैं, जो पहली बार मिलेंगे, वो तो यही कहेंगे ना कि हमारी तपस्या ने आज रंग लाया है, आखिर वो दिन आया आज। गाओ हा? जिस दिन की हम राह तकते थे वो दिन आज आ गया है। तो वो परमात्मा जिसको आज हम साकार में मिलेंगे, उसके मिलन के जो पल होंगे बहुत ही स्वर्णिम पल होंगे। क्यों? क्योंकि वो पिता परमात्मा कौन सी दुनिया से हमारे पास आएगा? वो दुनिया कैसी है? सुनहरे लाल रंग वाली है ना, क्योंकि वो पांच तत्वों से पार है। वहां छठा तत्व है और वो छठा तत्व कैसा है? सुनहरे लाल रंग का है। उस सुनहरे लाल रंग वाली छठे तत्व वाली दुनिया से उतरकर पंच तत्वों की दुनिया में प्रवेश करेगा वो, है ना? पंच तत्वों की दुनिया में प्रवेश कर पंच तत्वों वाले शरीर में प्रवेश करेगा। लेकिन सीधा ही पंच तत्वों की दुनिया में आने से पहले बीच में कहां आएगा? वो सूक्ष्म वतन में होगा, जहां कौन है? संपूर्ण ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, फरिश्ता ब्रह्मा, जिसको हम कहते कल पूर्णिमा थी ना। देखो पिछली बार जब बाबा आए 16-10 थी तारीख, 16 अक्टूबर, और वो दिन था शरद पूर्णिमा का। और शरद पूर्णिमा का दिन किसका यादगार है? महारास का यादगार है कि जब कृष्ण ने गोपियों के संग महारास खेली थी। और उस महारास की विशेषता क्या होती है कि अकेला एक कृष्ण है और गोपियां अनेक हैं, लेकिन हर गोपी को ये अनुभूति है कि कान्हा मेरे साथ है। वो एक है, गोपियां अनेक हैं, लेकिन हर गोपी के सामने एक कान्हा खड़ा है। और उस महाराज के पहले भी, वो महाराज का दिन तब आता है, उसमें बताते हैं भागवत में कि उस महाराज के पहले श्री कृष्ण ने चीर हरण किया था गोपियों का, उसके बाद ही वो महाराज की घड़ियों का आनंद लेने के हम पात्र बनते हैं। तो चीर हरण किस बात का संकेत है, ये महाराज किस बात का संकेत है हम ब्राह्मणों की भाषा में, हाँ, चीर हरण या कि जब तक हम देह भान से परे नहीं होंगे वो महाराज का दिन हमारे जीवन में आ नहीं सकता, वो महाराज का आनंद हम ले नहीं सकते। तो पिछली बार तो शरद पूर्णिमा थी, आज एक दिन पहले पूर्णिमा हो गई है ना, कल पूर्णिमा थी, आज एक दिन आगे निकल चुके, लेकिन लगभग पूर्णिमा ही समझ लो। तो पूनम के दिन तो हमारी भी वो स्थिति होनी चाहिए। तो जैसे कहा कि वो ब्रह्मा बाबा तो उस परमात्मा के संग अपने देहभान को तोड़कर उसके साथ फ्रिक्वेंसी मिलाकर संपूर्ण बन गया, पूनम का चांद बन गया, और इसलिए वो परम धाम से पिता परमात्मा परम ज्योति पहले किस में जाके प्रवेश करेगी, ब्रह्मा के अव्यक्त तन में। यूं देखा जाए तो वो ब्रह्मा और शिव बाबा हमेशा ही कंबाइंड होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम याद करते हैं तो सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं और मूल वतन में भी जाते हैं। तो शिव बाबा उस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके दोनों ही मिलकर पंच तत्वों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, और वो पंच तत्वों की जो काया है, और वो भी कौन सी निमित्त काया है, दादी गुलजार वाली, उसमें आकर के वो प्रवेश करेंगे। चंद्रमा अपनी जगह पर चमक रहा है, आप डायरेक्ट चंद्रमा को न भी देख सको लेकिन चारों ओर जो प्रकाश दिखेगा आप कहेंगे लगता है पूनम का चांद है आज, भले नजर आप देखने की कोशिश करेंगे इधर है या उधर है, परंतु जो प्रकाश फैला हुआ है उसको देखते ही हमको ये एहसास हो जाता है कि पूनम का चांद खिल चुका है। ठीक ऐसे ही वो पिता परमात्मा ब्रह्मा के साथ में जब दादी गुलजार जी के तन में डायमंड हॉल में प्रवेश करेंगे, हम कैसे समझ पाएंगे उसको कि वो आ गए हैं, कैसे समझेंगे बोलो, हाँ? जैसे कहा ना चांद चमक रहा है, मैंने भले चांद ना भी दिख रहा हो लेकिन जो प्रकाश है उसका, उस प्रकाश को देखते ही हम अंदाज लगा सकते हैं आज पूनम है। यहाँ तक कि रात घनी अंधियारी होती है जब हम विश्राम पर चले जाते हैं, सुबह उठते ही अगर प्रकाश चारों ओर दिख जाता है, हमने सूरज को भी देखा भी नहीं है लेकिन हम कह देते हैं दिन हो चुका है। किस आधार से? प्रकाश के आधार से। तो ये परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके गुलजार दादी के तन में जब आएंगे तो वो तन तो मुझे इन आंखों से दिखाई देगा, वो तन तो मुझे इन आंखों से दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है कि कईयों के मन में वो प्रश्न उठ जाए, बाबा आए हैं या नहीं आए हैं, है ना? तो वो चूंकि हम आत्मा को भी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं तो सोचिए परमात्मा को इन आंखों से कैसे देख पाएंगे, वो तो सिर्फ अनुभूति का विषय रहेगा ना, कि जैसे मेरे घर के अंदर तो सूरज नहीं है ना, मैं तो घर के अंदर सोई थी लेकिन जब सुबह उठी खिड़की खुली थी चारों तरफ प्रकाश दिखा तो मैंने कहा सूरज उग चुका है, जबकि सूरज को देखा नहीं मैंने। ठीक ऐसे ही, क्योंकि वो ये सूरज तो फिर भी इन आंखों से देखा जा सकता है लेकिन वो ज्ञान सूर्य तो इन आँखों से देखने वाला विषय ही नहीं है। जब आत्मा ही इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा। हाँ, लेकिन निशानियां होगी कि जिन निशानियों से हम महसूस कर लेंगे। कई बार हम घर के अंदर बैठे होते हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, बाहर बारिश हो चुकी होती है, हमको पता भी नहीं होता है। लेकिन कब अंदाज लग जाता है कि बारिश हुई है? मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध लगता है, बारिश हुई है, तो निशानियों से पता चल जाता है। ठीक ऐसे ही पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के संग जब गुलजार दादी के तन में प्रवेश करेंगे तो वो जो वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाएगा, कौन आ रहा है? अल्माइटी अथॉरिटी, पवित्रता का सागर, उसकी जो पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाएंगे, जिसकी आप अनुभूति तभी कर पाएंगे, जो कहा महाराज का आनंद उन्हीं गोपियों को मिला जिन गोपियों का पहले चीरहरण हुआ। अर्थात अगर हम देहभान से ऊंचे होंगे, और देहभान से हटकर होना मतलब उस आत्म अभिमानी स्थिति में होंगे, तब जाकर हमारी फ्रिक्वेंसी मैचिंग होगी, और उस फ्रिक्वेंसी मैचिंग के कारण वो जो पवित्रता के वाइब्रेशंस पूरे हाल में फैले हुए होंगे उसका हम अंदाज लगा पाएंगे। अगर देहभान में होंगे तो आजू बाजू देखते रहेंगे और पूछेंगे बाबा आए हैं क्या, क्योंकि पहले तो फिर भी विधि थी कि बाबा जब आते थे, मतलब दादी गुलजार जी स्टेज पर आते थे, बैठते थे, सामने भोग रखा हुआ होता था, आह्वान के गीत बजते हैं और दादी उस आह्वान के गीत के दौरान ट्रांस में चली जाती है, और वो आगे और भी आह्वान का गीत बजता रहता है, और उसके बाद दादी गुलजार की आंखें खुल जाती है, चेहरा बदल जाता है, और हम और दादी को उस समय थोड़ा शेकिंग भी होता है, और हम समझ जाते हैं बाबा आ गए हैं। लेकिन अब तो मिलने की विधियों में बाबा ने भी बहुत परिवर्तन कर दिया है ना? तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले से जो छाप पड़ी हुई है कि बाबा आए हैं तभी समझेंगे जब दादी गुलजार की आंखें बंद होगी, दादी ट्रांस में चली जाएगी, दादी को थोड़ा शेकिंग होगा, उसके बाद दादी की आंखें खुलेगी और दृष्टि मिलेगी, तब हम समझेंगे बाबा है। पर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो कहते हैं ना कि उस बेअंत की गतमत को नेति नेति क्यों कहा गया, उसका कोई अंत नहीं है। कुछ समय तक एक विधि चलेगी तो कुछ समय के बाद दूसरी विधि चलेगी। तो हम उस विधि को भी ऐसे पकड़ के न रखें कि ऐसा ही होगा तो समझेंगे बाबा आएंगे। बाबा ने ये भी सिस्टम चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि साकार में भी ये विधि नहीं थी। जब बाबा ब्रह्मा बाबा साकार थे तब जो अभी जो वर्णन किया कि दादी बैठेगी ट्रांस में जाएगी, वो विधि तब भी नहीं थी। बाबा बैठे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग मिलते मिलते अनुभव करते हैं, अभी अभी हम ब्रह्मा बाबा से मिल रहे थे, अभी अभी हम शिव बाबा से मिल रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा की पधरामणि हो जाती थी और वाइब्रेशन में वो फर्क आ जाता है, नैनों में, चेहरे के हाव भाव में, और आवाज में भी परिवर्तन नहीं होता था। तो ये जो पहले वाला बीच की स्थिति बताई ना कि दादी बैठी और जो फिर जब वाणी चलती थी तो उसमें आवाज में भी अंतर था, विस्परिंग साउंड होता है, तो हम समझते बाबा बोल रहे, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। माना बाबा बिल्कुल ऐसे फिक्स नहीं रखा है, कभी विस्परिंग साउंड से भी बोलते हैं तो कभी दादी गुलजार जी की ही आवाज में बोलते हैं। तो वो इंतजार नहीं करते रहना कि विस्परिंग साउंड नहीं आया है ना तो बाबा नहीं आया है, नहीं तो खो दोगे, अवसर को खो देंगे हम। क्योंकि अभी दादी गुलजार जी जिनके तन में शिव बाबा इतने लंबे समय से आ रहे हैं, उसमें भी तो इफेक्ट रहता होगा ना। आप किसी फ्लावर वेस्ट जो होता है उसमें फ्लावर सुगंधित रख दो, उसको उठा लो बाद में, उस फ्लावर वेस्ट में सुगंध रह जाती है नहीं रह जाती है? इलायची किसी डब्बे में रख दो आप, और उसके बाद कहो नहीं ये डब्बा मुझे चेंज करना है, इलायची इसमें नहीं रखनी अब, लेकिन उसमें इलायची की सुगंध आती रहती है, आती रहती है। तो शिव बाबा भी जब उसके तन में आते हैं तो उसके शरीर में भी तो उतनी पावर भर के जाते होंगे ना, न सिर्फ शरीर में, उस आत्मा में भी। और इसलिए आजकल जब हम दादी को देखते हैं तो क्या भावना होती है अंदर में, बाबा दिख रहे हैं, बाबा से मिल रहे हैं। तो दादी को देखा लगता है बाबा को देखा, क्यों? क्योंकि दादी भी क्या हो गई है, उन वाइब्रेशन से उसकी आत्मा में भी वही वाइब्रेशन भरपूर होते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टू गॉड बॉडी लगने लगता है ना, फिर ऐसा ही होता है ना। तो पहले तो वाइब्रेशन, जैसे ही वो परम हस्ती उस डायमंड हॉल में, उस गुलजार दादी जी के तन में प्रवेश करेगी, चारों ओर का वाइब्रेशन एकदम शुद्ध, पवित्र, पावरफुल, पॉजिटिव हो जाएगा। आज गुलाब के फूल वैरायटी होते हैं, लेकिन कौन से आपके सामने चार पांच प्रकार के गुलाब के फूल सामने लाके रख दिए जाए, लेकिन आप कौन से फूल को तुरंत कह दोगे ये तो देशी फूल लग रहा है, देशी गुलाब, जिसमें से सुगंध निकल रही है आप कह देंगे ये देशी गुलाब का फूल है। तो क्या देखा उसमें से, वो खुशबू दिखाई तो नहीं दी ना, लेकिन क्या किया, उसको अनुभव किया हमने। ऐसे ही वो परम सत्ता जब नीचे उतर कर आएगी तो उसकी खुशबू, उसकी खुशबू कौन सी है, प्रेम की, खुशी की, शांति की, शक्ति की, आनंद की, ये उसकी खुशबू है। और आप देखेंगे जब बाबा आते हैं, आपको भल ना भी लगे ना, लेकिन आपका जो वाइब्रेशन चारों ओर का हो जाएगा ना, वही आपको फील कराएगा कि बाबा आ गए हैं। क्योंकि परम हस्ती के आने से ही तो वाइब्रेशन में परिवर्तन आ गया है। तो इसलिए ये राह नहीं देखते रहना कि अभी तो दादी ने आंखें भी बंद नहीं की है, और अभी अगर दादी बिना आंखें बंद किए दृष्टि दे रही तो ये बाबा है या ये दादी है, ये संशय मन में नहीं करना। क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसा चल रहा है और हम अगल बगल वालों को सुनते रहते हैं ऐसे, कहां भी दादी की तो आंखें बंद नहीं, कहां आप कह रहे हो बाबा आया है, क्योंकि पहले वाली विधि बुद्धि में फिट है। तो इसका मतलब अगर पहले वाली विधि बुद्धि में फिट है और उसी का इंतजार कर रहे हैं, मतलब हम देहभान से उठे नहीं है, देहभान से हम उठे ही नहीं, मतलब वो देह की निशानियों को ही सिर्फ देखना चाह रहे हैं, वो सूक्ष्म निशानियां जो वाइब्रेशन में परिवर्तन आ जाएगा, एटमॉस्फेयर जो चार्ज हो जाएगा, वो नहीं अनुभव कर पा रहे हम। तभी तो मन में प्रश्न उठ रहा है ना, और तभी तो हम सोच रहे अभी कहां आया है बाबा, अभी तो दादी ही है। तो इतना अपने आप को इस देह की स्मृति से उपराम करना है, यही है चीरहरण। तो देह की स्मृति से उपराम, तो देह की दुनिया से अपने आप उपराम, देह के संबंधियों से अपने आप उपराम, देह को लेकर जिस संसार में रहते हैं उस संसार में आने वाली परिस्थितियों से उपराम, हर चीज से। क्योंकि जड़ होती है तो वृक्ष पनपता है, तो देह की दुनिया जो है, देह के जो संबंधी है, देह से संबंधित परिस्थितियां जो है, वो देह है तो है। इसीलिए तो कहते आप आप मुए मर गई दुनिया, जबकि दुनिया तो है वहीं पे, लेकिन मैं मर गया तो फिर मेरे लिए दुनिया भी मर गई ना। तो अगर देह की स्मृति से हम ऊपर उठे हुए रहेंगे तो देह से रिलेटेड जो भी बातें मन में आती है उन सबसे भी हम उपराम होंगे और तब जाके हम माना आत्म स्थिति में होंगे और आत्मा का मिलन होगा, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा ही है ना, लेकिन परमात्मा। तो वो परमात्मा जिसको हमने गाया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे धरती पर, तो वो तो आकाश सिंहासन छोड़कर धरती पर आएगा। हम भी आकाश सिंहासन पे ही थे ना पहले, लेकिन हम तो बहुत लंबे समय से उस आकाश सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आ चुके हैं, यहां पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, देह को ले लेकर, और एक लंबा काल हो गया है इस देह के भीतर रहते रहते, और इसलिए इस देह में रहते देह से न्यारा रहना उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो परमात्मा पूरा ही कल्प में चारों युग तक तो वो आता ही नहीं है नीचे, सिर्फ और सिर्फ संगम युग में आता है, और वो भी अपनी देह में नहीं आता है, उधार वाली देह में आता है, कहता ना मैं लोन लेता हूं। और इसलिए उस परमात्मा के लिए ये बहुत सहज होता है कि देह में होते हुए भी देह से न्यारा और प्यारा। तो उस परमात्मा से मुझे मिलन मनाना है जो देह में होते हुए भी देह से न्यारा और प्यारा है, तो मुझे भी अपनी फ्रिक्वेंसी वही बनानी पड़ेगी, और इसलिए मैंने भी देह में रहते हुए भी देह की स्मृति से न्यारे और प्यारी आत्मा बनकर उससे मिलन मनाना है। नहीं नहीं, उस स्टोरी में सुनो, उस स्टोरी में नहीं, बराबर है, उस स्टोरी में श्री कृष्ण चीरहरण करता है, यहाँ पर भी वही करता है, क्योंकि उसी ने ही सिखाया है, बच्चे तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, ये उसकी तरफ से हमारा चीरहरण है। वस्त्र होता है तो वस्त्र होता है, तो उसने ही तो किया। जब तक उसने ये नहीं बताया था कि बच्चे तुम इस देह में रहते देह से न्यारी आत्मा हो, हमने कब समझा था अपने आप को आत्मा? सिर्फ वो कभी कभी कथाओं में सुन लेते थे, सत्संगों में सुन लेते, किसी की मृत्यु हुई है तब सुन लेते थे कि आत्मा चली गई है, उसको अभी योगदान देना है शांति का, पर आत्मा होकर जीना तो किसी ने सिखाया ही नहीं था। तो वो परमात्मा ने आके सिखाया, तो ये उसकी जो श्रीमत मिली, ये जो उसका ज्ञान मिला, ये ही उसकी तरफ से हमारा चीरहरण हो गया। इजी, ये स्मृति में रखना कि उसने मुझे ये ज्ञान दिया, तभी तो कहा ना कि वो आएगा उस निराकारी दुनिया से, भले देह में आएगा लेकिन चारों युगों में तो वो वहीं बैठा होता है, वो परम पवित्र हस्ती है। लेकिन हम आत्माएं परम पवित्र नहीं है, हम पवित्र हैं, और नीचे उतरती है तो वो पवित्रता भी हम गंवा देते हैं, और इस वो गंवाते इसीलिए है ना कि इस देह में रहते रहते ही तो गंवाते हैं। तो इस देह का भान हमारा गहरा हो चुका होता है, तब कहा कि प्रभु मिलन की मस्ती हम तभी अनुभव कर पाएंगे जैसे वो उस देह में आते हुए भी देह से न्यारा और प्यारा होता है, हमें भी इस देह में रहते उससे मिलन मनाते समय देह से न्यारा प्यारा रहना होगा, और वो उस क्षण का हमारा अभ्यास नहीं, पहले की पूर्व तैयारी। इसीलिए क्यों यहाँ मधुबन में जब आते हैं बाबा मिलन से थोड़े दिन पहले पहुंच जाते हैं, क्लासेस आदि ज्ञान की समझ को बढ़ाते हैं, साइलेंस भट्टियां करते हैं, ताकि मेरा वो देह से न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव गहरा होता जाए, ऐसा गहरा होता जाए कि बाबा मिलन के दिन वो मुझे पूरा पूरा सहयोग दे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैचिंग की बात है ना वहां पे। वरना क्या होता है, रेडियो में स्टेशंस तो बहुत आ रही है, स्टेशंस तो बहुत है ना, लेकिन मैचिंग करने के लिए वो बटन को कितना घुमाना पड़ता है, बहुत घुमाना पड़ता है। तो इधर का हमारा सिग्नल वीक होगा ना, तो बहुत मेहनत लगेगी उसके साथ ट्यूनिंग में, बहुत दूर की वो आ जाएगा ना, पास में आ जाएगा ना वो, तो बहुत दूर की तो हम रोज करते हैं ना अनुभव, अमृत वेला जो भी है। तभी क्यों कहा ये साकार में हमसे बाबा मिलेगा, निराकार बाबा आ जाओ साकार गाड़ी में, साकार गाड़ी में आएगा ना आज, तो वो वाइब्रेशंस हमें अनुभव करने हैं। और फिर एक तो वो वाइब्रेशंस फैला देगा, फैलाएगा मतलब अपने आप, अपने आप होता है ना, सूरज निकला अपने आप रोशनी फैल गई, गुलाब का फूल यहाँ रखा अपने आप चारों तरफ उसकी सुगंध खुशबू फैल रही, वो उपस्थित हो जाएगा और अपने आप उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाएंगे, और जिसकी प्रॉपर ट्यूनिंग होगी वो उसको अंदर भरता रहेगा भरता रहेगा, और वो मिलन की मस्ती का अनुभव उसका शुरू हो जाएगा। वो किसी की राह नहीं देखेगा अगल बगल वाले की कि वो क्या कह रहा है और वो क्या कह रहा है, नहीं तो हम एक दूसरे को देखते रहते, उस पीछे वाला बोलेगा कहा बाबा कहाँ दिख रहा है तुमको। तो ये गलती नहीं करना, क्योंकि बाबा का अभी मिलने का समय भी शॉर्ट हो गया है। कहाँ बाबा रात रात तक मिलते थे और कहाँ बाबा दो घंटे के अंदर मिलन मना के फिर से वापस चले जाते हैं। तो एक भी पल मेरा मिस न हो इसका हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वो बताया कि महाराज में गोपियों काना एक है, गोपियां अनेक है, और हर गोपी महसूस कर रही है कान्हा मेरे साथ है, कोई भी गोपी दूसरी गोपी को नहीं देख रही है। तो हमें भी यही करना है, अगल बगल वाले को नहीं देखना है, उसको अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है वो उसकी अपनी बात, लेकिन मैं खुद उसके रंग में रंग जाऊं, वो मेरे सामने आए मैं उसके साथ रास तो खेलूं ना, उसके साथ मैं खेलूं ना रास, वो अपने अंदर भरूं तो मैं उसको और फैलाऊंगी, तो बगल वाला भी फील करे उसको, ना कि मैं बगल वाले का वेट करूं उसको अनुभव हो रहा है कि मैं भी समझू बाबा आया है। तो एक तो वो वाइब्रेशंस फैलाएगा, और दूसरा जो गायन है नजरों से निहाल कींदा सतगुरु स्वामी, वो नजरों से निहाल करेगा, और जब वो नजरों से निहाल करेगा ना तब भी शायद कईयों के मन में प्रश्न होता है, क्योंकि हरेक का अनुभव अपना अपना होता है। आज दिन तक जो 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 फर्स्ट टाइमर है उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो पहले भी मिल चुके हैं उनके भी अपने अपने हरेक के अनुभव होंगे कि हम पहली बार बाबा को मिले तो मुझे लाइट दिखी, मुझे ये हुआ, मैं हल्का हो गया, हरेक का अपना अपना। लेकिन मुझे इस इंतजार में समय नहीं गंवाना है कि जब बाबा मुझे देखेंगे मुझे लाइट दिखेंगी तब मैं समझूंगा ये बाबा है, क्योंकि पहले ही कह दिया कि जब इन आंखों से आत्मा भी नहीं दिखती है वो परमात्मा इन आंखों से कैसे दिखेगा। तो वो भी गलती नहीं करना कि मुझे लाइट नहीं दिखी तो मैं कैसे समझूं ये बाबा है, वो लाइट का भी इंतजार नहीं करना। लेकिन वो जब दृष्टि, और ये भी गलती नहीं करना कि बाबा तो अपनी नजरे पूरे हाल में दौड़ाएंगे, लेकिन जिस समय बाबा पूरे हाल में नजर दौड़ा रहे थे और मैं भी जब उनको देख रही थी, लेकिन मैंने ये महसूस नहीं किया कि बाबा की नजरें मेरे पर टिकी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि ऐसा तो मुझे लगा ही नहीं कि बाबा की नजरें मेरे पर टिकी, तो ये भी हो सकता है, चांसेस है। पर फिर भी इसको ये नहीं समझना कि बाबा ने हमको नहीं देखा, क्योंकि अगर आपके पास फोकस है, टॉर्च है, तो आप ऐसे टॉर्च को यूं घुमा रहे हो, सामने वाला भले उसका ध्यान चूक गया, उसको लगे मेरे पास टॉर्च नहीं आई, लेकिन ऐसे गोल जब वो धीरे धीरे घूम रही तो सबके पास ही जाएगी ना वो, तो ऐसे कैसे कह सकते कि यहाँ मिस हो गया, हो नहीं सकता वो। तो इसलिए फिजिकल निशानियों में कि फिजिकली कोई मुझे लाइट दिखाई दे तब मैं समझू बाबा है, इसमें भी अपना समय नहीं गवाना। नहीं तो कई बार इस प्रकार की बातें होंगी तो हो सकता है संशय आना शुरू हो जाए, पता नहीं मेरे को तो लगा ही नहीं बाबा आए हैं। हाँ, इतनी बड़ी परम हस्ती आके वाइब्रेशंस के द्वारा आपको फीलिंग दे रही है, बाहर इतनी गर्मी तेज है, अंदर आप एसी के अंदर आकर बैठ जाते हैं, लगता है ना मुझे राहत मिली उस गर्मी से, भले फिर आपको दिखाई नहीं दे ना एसी कहाँ रखा है, जरूरी है कि मुझे दिखाई दे एसी कहाँ रखा है, लेकिन वो ठंडक तो महसूस हो रही है। हाँ, बाहर बहुत ठंडी है, सर्दी है, अंदर में हीटर चालू है, मुझे न दिखाई दे ना हीटर कहाँ जल रहा है, लेकिन अंदर में गर्मी, मुझे वो राहत तो मिल रही है ना। तो वैसा महसूस करना है, वो फीलिंग्स अंदर में, फिजिकल न भी कुछ हो नो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर मेरा मन बुद्धि क्या स्वीकार कर रहा है, और वो डिपेंड करेगा कि मन बुद्धि उस समय उसी के साथ कनेक्टेड है, वरना मन में कुछ और बातें आ गई तो तब फिर हम कहेंगे मेरे को तो लगा ही नहीं बाबा ने मेरे को देखा, क्योंकि मन बुद्धि कहीं और हो गया था ना। तो इतना मन और बुद्धि को उस एक प्रभु पिता के ऊपर ही एकाग्र करना है। एकाग्र शब्द का अर्थ ही ये है कि अग्र में सिर्फ और सिर्फ एक हो, दूसरा कोई नहीं। तो अग्र माना सामने और एक, तो सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही हो तो सिर्फ और सिर्फ वही ध्यानों में होगा, विचारों में होगा, तो और कोई कौन दिखाई देगा। वो तो जब कुछ और दिखाई देता है ना तब वो एक खिसक जाता है। तो एकाग्रता का मतलब ही है कि मेरे मन बुद्धि के सामने एक की ही छवि हो, एक के ही बारे में चिंतन चल रहा है, एक से ही कनेक्टेड हूँ, उस एक से ही जो वाइब्रेट होकर मेरे पास आ रहा है उसका ही मैं अनुभव कर रही हूँ, ये है सच्ची एकाग्रता। तो वाइब्रेशन अनुभव करें, नजरों से निहाल हो जाए, और नजरों से निहाल होते होते फिर बाबा वाणी आरंभ करेंगे। वो वाणी ही और कुछ नहीं, वो ज्ञान है। लेकिन जब बाबा शुरू शुरू में आए थे तो पहला पहला प्रभाव, जो इतने सारे बच्चे छोटे छोटे दादियां उस समय जो बाबा के बने, किस आधार से बने, ज्ञान के आधार से या प्यार के आधार से, प्यार, क्योंकि उस परम पिता ने धरा पर आकर सबसे पहले प्यार की वर्षा की है। ज्ञान तो बहुत काफी समय बाद किया है, सबसे पहले प्यार से उनको अपना बनाया है। तो ये पिता आकर आज भी वही करेगा, पहले प्यार से भरपूर करेगा, नजरों से, अपने चेहरे से वो सारा उसका प्यार झलकेगा, जो आप जब देखेंगे आपको अनुभव होगा। और उस प्रेम में भरपूर होने के बाद फिर वो वाणी सुनाता है, वो ज्ञान सुनाता है। तो प्रेम से भरी बुद्धि होनी चाहिए हमारी, इसीलिए तो भक्ति मार्ग में क्या आता है, उद्धव और गोपियों में क्या अंतर था, उद्धव भागवत में उद्धव का भी वर्णन आता है, नहीं सुना है, सुना है, सुना है, कईयों ने सुना है कईयों ने। उद्धव जो था वो पक्का ज्ञानी था लेकिन प्रेम का पूर्ण अभाव था, जबकि गोपियां जो थी वो प्रेम से भरपूर थी, उनको ज्ञान नहीं समझता था, उनको ज्ञान नहीं समझता था। तो जब गोपियां कृष्ण से दूर हो गई थी तो ना तो कृष्ण को चैन पड़ रहा था न गोपियों को चैन पड़ रहा था, और जब कृष्ण और ये गोपियों की दूरी थी तो कृष्ण जो है उद्धव उसका सखा था, तो उद्धव के द्वारा वो चाहता है कि मैसेज पहुंचाए, और कृष्ण को पता था कि ये पक्का ज्ञानी है, हाँ ये निराकार वाला है, कौन माता कौन पिता वही सब कुछ है। लेकिन कृष्ण भी जानता था कि संसार सिर्फ इसे निराकार से नहीं चल सकता है, उसमें साकार में कुछ प्रेम की अनुभूति चाहिए। तो इसका अदरवाइज अगर इसके पास इतना ज्ञान है भी और प्रेम नहीं है तो जीवन अधूरा है। तो वो उसको सिखाना चाहता था कि प्रेम क्या चीज होती है, और इसलिए उसने पत्र लिखकर बहाना बनाया कि जाओ गोपियों को पहुंचा के आओ। हाँ, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, फिर आगे क्या बोलते, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब ही सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से जीवन नहीं बन सकता है, उस ज्ञान से पहले जीवन में प्रेम का रस बहुत जरूरी है। तो पहले हमें अपने आप को वो जो दृष्टि देते हुए वो प्रेम हम पर बरसाएगा, उस प्रेम में वातावरण में अपने आप को प्रेम के रस से भरपूर करना है। वो जब आएगा तब नहीं, उससे पहले की ही आपकी स्थिति होगी। आप आज सुबह से ही आपने क्या किया होगा, आज बाबा आने वाले हैं, घर में भी कोई आने वाला होता है ना, समझो पापा कहीं बाहर गए हुए और बच्चे को पता चल जाए कि पापा को फलानी डेट, वो डेट क्या आएगी, पहले से बोले अच्छा दो दिन पापा को आने के लिए रह गए हैं, अभी एक दिन रह गया है, मम्मी आज पापा आएंगे ना, 17 बार बोलता रहेगा, क्योंकि वो उसके प्यार में मगन है और उस प्यार में मगन होने के कारण वो प्यार उसका शब्दों के रूप में बार बार क्या हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसे ही हम भी अपने आप से बातें करें, किसी से बात तो क्या हो रहा है, आज बाबा आने वाले हैं, आज बाबा आने वाले हैं, तो हम अपने आप को क्या कर देते हैं, प्रेम से भरपूर कर देते। तो प्रेम से सुबह से ही हम भरपूर किए हुए, यहाँ तक कि सुबह से नहीं, अब चल पड़े हो ना मधुबन जाना है, तब से ही लेकर तैयारी कर रहे हो, तब से लेकर मुझे तो बाबा से जाके मिलना है, मुझे 1 साल हो गया है बाबा का ज्ञान लिए लेकिन मैं मिली नहीं हूँ अभी तक साकार में, मुझे मधुबन जाना है। कितनी तैयारियां करते हैं, उस समय भी क्या भरा होता है अंदर में, प्यार ही तो भरा होता है ना, तो उस प्यार तो हृदय में वो प्यार भरा हुआ हो और वो सामने से भी वो प्यार बरसा रहा हो, एकदम प्रेम की वर्षा में भीगते भीगते उस ज्ञान को स्वीकार करना है। उसका मुख बोलेगा हमारे कान सुनेंगे, जिसको कहा कि बिना मुख वाला बोलने लग जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा ना, जिसको दृष्टि नहीं है आंखें नहीं है वो आंखों से दृष्टि देगा। तो ऐसी परम हस्ती के ये 3 बातें होगी जिसका हमें पूरा पूरा फायदा लेना है। 1 वाइब्रेशन, जिसको प्रकंपन कहेंगे हिंदी में, 2 विजन, जिसको कहेंगे दृष्टि, जिसको कहेंगे नजरों से निहाल होना है, और 3 हम क्या बोलते हैं, गॉडली वर्शंस बोलते हैं ना, तो वर्शंस वाणी जो बोलेगा, गॉडली वर्शंस हम क्या बोलते हैं, भगवान उवाच ऐसे ही बोलते हैं ना, तो भगवान जो बोलेगा वो वर्शन है, दीज आर द गोल्डन वर्शन ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। और इसीलिए कहा प्रभु मिलन के हमारे जो पल होंगे वो स्वर्णिम पल होंगे, कि वो आएगा भी उस सुनहरे लाल रंग वाली दुनिया से और आकर बोलेगा भी ऐसी वाणी जिससे हमारे जीवन को ऐसा बना देगा जो हम सुनहरी दुनिया में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे, है ना, गोल्डन एज में लेके जा रहा है ना वो हमको। तो आएगा वो परम धाम से और हमको तैयार करेगा सुखधाम के लिए। तो ये बीच का पीरियड बहुत ही आनंद वाला, कि वहां जाने के बाद भी बाबा कहते हैं ना, वहां तो देवताओं की गोद मिलेगी तुम्हें, दैवी गोद मिलेगी, ईश्वरीय गोद मिलने का तो यही एक अच्छा अवसर संगम युग का है। तो इस संगम युग में आज का जो दिन है ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, इधर उधर देखकर समय को व्यर्थ नहीं गवाना है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। मेरी धारणा मुझे काम आएगी, दूसरे की धारणा उसको काम आएगी, तो मैं किसी और की धारणा के अनुसार अपने आप को फ्लक्चुएट न होने दूं, इसका मुझे अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन रखना है। तब जाकर वहां उस हाल में जब बैठेंगे ना, तो ये भी हो सकता है सीट के चक्कर भी होंगे वहां पे, आगे बैठना पीछे बैठना, हाँ मेरी सीट पे कोई और बैठ गया, तो दिन भर जो मेहनत की थी कि देह से उपराम होकर मैं अपनी स्थिति बना रही थी, और उस हॉल में जाकर के एक सीट के चक्कर में पूरी ही मनस्थिति क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। वैसे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि फॉरेनर्स के लिए एक स्पेशल सेक्शन होता है, चेयर्स वाला भी और पट वाला भी, कि आप लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी भारत वालों को करनी पड़ती है। तो फिर भी आप लोग उस दृष्टि से अगर देखें तो काफी भाग्यशाली हैं। तो जितना हिस्सा मिला है कि ये फॉरेनर्स बैठेंगे, चाहे चेयर वाला चाहे पट वाला, जहां भी मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना, आगे पीछे के चक्कर में ये ध्यान रखना कि मेरी मनस्थिति न खराब हो जाए। क्योंकि अगर उस आगे पीछे के चक्कर में आपने कुछ कुछ बोल के आगे की सीट ले भी ली ना, लेकिन अब उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, फिर तो क्या क्या लक्ष्य से हम उस हॉल में बैठे हैं? सामने सीट में देखूं, मुझे स्क्रीन पे देखे लोग कि मैं सामने बैठी थी, वो लक्ष्य है मेरा, या मेरा लक्ष्य है कि वो परम पिता जब धरा पर आएगा मेरी उसके साथ प्रॉपर ट्यूनिंग होनी चाहिए। क्योंकि ट्यूनिंग होते ही फिर मुझे कुछ नहीं करना, उसके पास जो भी उसके जो भी वाइब्रेशन से वो मेरे अंदर भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे। वरना अगर सीट के चक्कर में ट्यूनिंग किसी और के साथ हो जाएगी ना, तो वही बातें याद आएगी, फिर होता है ना ऐसा कई बार, तो उसकी ही बातें याद आएगी, उसकी ही बातें याद आएगी, तो इधर नहीं हो पाएगा। रेडियो में दो तीन स्टेशन होते हैं ना पास पास, फिर यही हाल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे ऐसे करने की, और एक बार लग जाता है ना, अगर दूसरा थोड़ा हिला के बोलता है ना प्लीज उसको छेड़ना नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको ट्यून किया है तो ये कितना हम सुबह से तैयारी कर रहे हैं ना कि हमको बाबा से मिलन का पूरा अनुभव करना है, तो वह सीट के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हिल जाए हम, और हिलने के बाद और फिर जब लौटे तो कहें कि क्या सब लोग बोलते थे बाबा मिलन का इतना अच्छा अनुभव होता है, इतना अच्छा अनुभव होता है, मेरे को तो हुआ ही नहीं। तो अनुभव किस आधार पे होता है वो भी नोट करके रखना है। अनुभव होता है हमारी खुद की मन की स्थिति पर। तो जब दूसरा मुझे वर्णन करके बता रहा है कि मैंने तो बहुत सुंदर अनुभव किया, वो किस कारण कह रहा है, उसकी मन की स्थिति उस समय उतनी श्रेष्ठ थी। तो हम सिर्फ शब्दों को पकड़ लिया और सूक्ष्म बात को कैच नहीं किया, और वो सूक्ष्म बात को प्रैक्टिकल में अपने में धारण करने के लिए अटेंशन नहीं रखा, और फिर हमने शब्दों को बोल दिया, हमको तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। ऐसा हो नहीं सकता ना कि हीटर चल रहा हो और आप कहे मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, हो नहीं सकता ऐसे। एसी चल रहा हो और आप कहे मुझे ठंडक नहीं लग रही, हो नहीं सकता ऐसे। वो कब होगा, जब अगर आपके ही शरीर में आपके ही मन में बहुत तपन है, तब वो एसी की ठंडक आपको नहीं महसूस होगी। वरना हो नहीं सकता कि एसी चालू हो और आप ठंडक की महसूसता ना हो। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना उस परम पिता के लिए। मनुष्यों के लिए हो सकता है कि आज वो शीतलता का स्वरूप है तो कल वो बहुत जोश वाला स्वरूप है, लेकिन इस परमात्मा के केस में ऐसा है ही नहीं। तभी तो उसको कहा परम पवित्र, सिर्फ पवित्र नहीं है वो, परम पवित्र है। सिर्फ आत्मा नहीं है वो, परम आत्मा है वो। वो ज्ञान का सूर्य है, वो प्यार का सागर। नदियां तो फिर भी कभी सूख भी जाती है तो कभी बाढ़ भी आती है। चंद्रमा भी फिर भी कभी अमावस तो कभी पूनम से गुजरेगा, लेकिन सूर्य कभी नहीं। सागर कभी बाढ़ नहीं आएगी और कभी सूखेगा नहीं, हमेशा ही भरपूर है, हमेशा ही रोशन है। तो उस परमात्मा में तो डाउट करने का कोई भी मार्जिन ही नहीं है। तो वो जब आएगा, जब वो है ही प्यार का सागर, तो क्या फैलेगा चारों तरफ? प्यार ही फैलेगा। जब वो है ही खुशियों का सागर, तो क्या फैलेगा चारों तरफ? खुशी के ही वाइब्रेशन फैलेंगे। और ज्ञान को तो वो शब्दों से जब बोलेगा, उसको हम अनुभव करेंगे, वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वो फिजिकल कानों में जाता है ना, तो उसपे आप डाउट नहीं उठा सकते कि हमने ज्ञान नहीं सुना। लेकिन ये थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, खुशी को प्रेम को अनुभव करना, ये थोड़ी सूक्ष्म लेवल की बात है। और वहां पे फिर ट्यूनिंग उतनी जबरदस्त चाहिए। और जब ज्ञान भी बाबा सुनाएंगे, तो उस ज्ञान सुनाने के समय भी हमारा फोकस बाबा पर ही हो, बहुत ज्यादा लिखने पर नहीं हो, बहुत ज्यादा लिखने पर नहीं हो। क्योंकि कई बार जब लिखने लग जाते हैं, तो वो लिखने में, लाइन पूरी करने में फोकस पूरा हो जाता है, और इधर बाबा की तरफ हमारा ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। कितने बहुत चंद क्षण हो गए ना बाबा के साथ के, फिर उसको भी हम लिखने में क्यों ये कर दें? तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि लिखना कब होता है पता है? कब होता है लिखना? कि मुझे पता है कि मैं भूल जाऊंगा ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं। इसीलिए लिखा जाता है ना, कि मैं बाद में, मुझे शायद याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं अभी लिख लेता हूं, इसलिए हम वो लिखते हैं। तो जब मैं लिखने में लग गई, तो वो जो वाइब्रेशन वाला पार्ट था, वो भी तो मैंने मिस किया ना। लेकिन अगर वो मैं अनुभव करती, वो ज्यादा गहरा छपता है। आज आप देखो, कहीं पार्टी में गए हैं, वैरायटी डिशेस तैयार है, उसमें आपको निमंत्रण मिला है, बहुत सारे आइटम जैसे रखते हैं आजकल, लौटने के बाद याद भी नहीं रहता है बहुत दिनों तक कि क्या क्या आइटम खा के आए थे। हाँ, बहुत सारे थे, मीठा भी था, नमकीन भी था, ये भी था, पर क्या था पूरा एग्जैक्ट कभी कभी याद नहीं आता है। लेकिन उसमें से वो चीज जरूर याद आती है, किसी एक चीज के लिए किसी ने बहुत प्यार से आपको, ये आप जरूर खाइए, ये ना बहुत स्पेशल मेथड से बनाया गया है, और ये खास मैंने आपके लिए रखा है, नहीं आपको खाना है, वो अपने हाथ से थोड़ा खिलाएगा, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो क्यों याद रहा? उसके साथ कितने सारे वाइब्रेशंस जुड़ गए ना। तो परमात्मा के वाइब्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जो बाबा के होते, जब जो पॉइंट बोल रहा है बाबा, उस समय उसके हाव भाव, जब हम उसमें भी खो जाएंगे ना, तो मार्जिन नहीं है कि हम भूल जाए। हाँ, ये इंसान की कैपेसिटी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड याद रहे, लेकिन भाव तो कैच रहेगा ना हमारे। और दूसरे दिन बाबा ने तो इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है कि आप रात को जाके सो जाओ, सुबह उठते ही मुरली आपके हाथ में है। तो पहले तो ये भी नहीं होती थी, तो अभी तो बाबा ने कितनी सारी व्यवस्थाएं कर दी है। और इतना ही नहीं, वो ऑडियो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए पूरा पूरा ध्यान हमारा उस समय जो भगवान लुटा रहा है, नैनों से भी लुटा रहा है, तो मुख से भी लुटा रहा है, तो हर एक एक्शन जो उठ करता है वो उन सब से। और फिर उसके बाद बारी आती है, दादियां ऊपर जाती है, बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है। भक्ति मार्ग में वो तस्वीरों को भोग स्वीकार कराया ना हमने, ये साकार में भगवान के मुख में डायरेक्ट हम भोग खिलाएंगे। निमित्त दादियां होंगी, लेकिन हम समझेंगे, बताए ना कान्हा के, कान्हा हर गोपी को लगता है कान्हा मेरे साथ, तो उतनी हमारी उसके साथ ट्यूनिंग। भले खिलाए दादी, लेकिन हम भी अनुभव करें कि हम बाबा को खिला रहे हैं, फिर बाबा दादियों को खिला रहे, हम भी अनुभव करें बाबा हमें खिला रहे हैं। भक्ति मार्ग में कितने भोग लगाए होंगे, अब उसको साकार नैनों से देखेंगे कि बाबा को हम अपने हाथों से भोग खिला रहे हैं और बाबा भी अपने हस्त कमलों से हम बच्चों को भोग खिला रहे हैं। यही तो गायन है ना, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं। तो ये सारा तो यही दृश्य होगा। इसीलिए कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुत सुनहरा दिन है। ये जो पल होंगे डायमंड हॉल में, जो बाबा की पधरामणि होंगी और जब तक वे हाजिर होंगे, वो हमारे जीवन के स्वर्णिम पल होंगे। तो वो हमारे अंदर में इतने गहरे प्रिंट हो जाए कि भले फिर बाबा की तो एक ड्यूरेशन है ना, लिमिट है कि उसके बाद बाबा ने जाना ही है, लेकिन जाने के बाद भी वो जो जितनी समय वो हमारे साथ रहा, उसके अंतर मन में इतनी गहरी छाप पड़ जाए कि वो भले न चला गया है, लेकिन हमारे को अभी भी वही सीने नजर आ रही है। इसीलिए उस महारास में भी यही दिखाते हैं। एक तो था कि महारास से पहले चीर हरण किया है, तब जाकर महारास का आनंद लिया है, और उस महारास का आनंद लेते लेते भी जब गोपियों को थोड़ा सा, मतलब शास्त्रों में ऐसे बताते कि थोड़ा सा अभिमान हो गया कि कान्हा तो मेरे साथ है, तो वो अभिमान को तोड़ने के लिए भी कृष्ण वहां से डिसअपीयर हो जाता था। कान्हा, अब गोपियों देख रही कि कृष्ण मेरे सामने नहीं है, लेकिन चूंकि गोपियां उसके प्यार में खोई हुई है, तो भले न कृष्ण वहां से डिसअपीयर हो गया है, नहीं प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन वो जिस समय उनके साथ था, वो जो उनके साथ उन्होंने खेल खेला, वो उनके अंतर मन में इतना गहरा छप गया था कि अभी भी वो उनके सामने बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा है। और जब कृष्ण ने देखा कि मेरे डिसअपीयर होने के बाद भी ये मेरे प्रेम में इतनी मगन है, तब फिर कृष्ण क्या होता है, फिर से अपीयर होता है, फिर से वहां पे उपस्थित हो जाता है। और तब कृष्ण ने उनको गोपियों को कहा कि मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे प्रेम का ऋणी रहूंगा। और तभी बाबा भी कहता है ना, बच्चे बाप को प्रेम की डोरी में बांधने आता है, तो वो प्रेम की डोरी में हमें उसे बांधना है कि वो बाबा, भले उसकी ड्यूरेशन है कि इस समय के बाद, इसमें जो बात आई है कि गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गया, वास्तव में वो क्या चीज है, अगर हम ब्राह्मण परिभाषा में देखें तो हम आत्मा चूंकि लंबे काल से इस देह में रह रहे हैं, तो हम प्रयास के द्वारा अपनी देह से न्यारी वाली स्थिति बना रहे हैं, तो वो फिर हमारी वो लंबी नहीं टिकती है। इसलिए आप देखना, जब बाबा आते हैं उस समय मेरी स्थिति, और जब बाबा दृष्टि दे के पूरा हो जाता है, वाणी चला के पूरी हो जाती है, दादियां ऊपर जाती है, ऊपर चलता है, उसके बाद आप अपने आप को देखना, इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। नोटिस किया है, सबको देखना, मतलब आप वापस देहभान में आ गए ना, आ गए ना देहभान में वापस, जो इतनी मेहनत करके देह से न्यारी स्थिति बनाई थी, मिल गया जिसके लिए बनाई थी, बोला वो अनुभव कर लिया, वापस आ गए। तब कहा उसमें गोपियों का बताया कि कृष्ण ने देखा जब ये मन अभिमान में आ गई है तो वापस डिसअपीयर हो गए। तो वही समय होता है कि बाबा को भी फिर जाना पड़ता है। वरना अगर हम लंबे समय की देह से न्यारी स्थिति बनाए ना, तो हम बाबा को लंबे समय तक बांध सकते, लेकिन वो हमारी भी स्थिति उतनी नहीं बनती है। आप नोटिस करना, लास्ट में कितना बोलना पड़ता है कि सभी भाई बहने चुप रहे चुप रहे चुप रहे, कितना बोलना पड़ता है, फिर भी आवाज आती रहती है आती रहती है, फिर एक दूसरे की बातें शुरू हो जाती है। तो आ गए ना देह भान में, देह की न्यारी वाली स्थिति से नीचे आ गए ना, तो फिर उसका भी टाइम आ जाता है चले जाने का, लेकिन वो चले जाए, हम देह भान में आते उससे पहले वो जो लुटा रहा है हमारे ऊपर, उसकी इतनी गहरी छाप अंदर पड़ जाए कि हम उस देह भान में उतना आए ही नहीं, और वहां से उठकर भी आए तो वो सारे नजारे जो देखे वो बार बार मेरे नहनों के सामने घूमते रहे, वो उसकी वाणी जो सुनी उसकी गुंजन कानों में होती रहे, तो अब भी मैं उसके साथ क्या हूं, अब भी मैं उसके साथ ही कनेक्टेड हूं। ऐसा ही हुआ ना, सिर्फ कनेक्टेड मतलब ये थोड़ी मैं आत्मा बिंदी वो आत्मा बिंदी और मैं कनेक्टेड हूं, सिर्फ इतना ही थोड़ी होता है कनेक्टेड माना, योग माना सिर्फ इतना ही नहीं होता है। लेकिन उस परमात्मा ने जो साकार में आकर जो खेलपाल किया, जो रास की, वो मेरे अंदर में इतनी गहरी छप गई है कि अब भले ना वो मेरे सामने न भी है, लेकिन फिर मेरे आंखों के सामने वो बार बार आ जाती है। और आंखों के सामने माना मन की आंखों के सामने ही आती है ना, वरना इस आंखों के सामने आती तो बगल वाला भी देख सके है ना, बगल वाला भी देख सके ना, वो बगल वाला नहीं देखता मतलब वो इन आंखों के सामने मतलब मन की, और मन की आंखों में आता है मतलब मुझे दिखता है इन आंखों से, औरों को नहीं दिखता है। तो इतना अपने आप को खुशबूदार बना के उस खुशबूदार परमात्मा से मिलन मनाना है, तब वो खुशबू हमारी इतनी गहरी हो जाएंगी जिसके लिए हम फिर गाएंगे, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, उसको पा लिया अब पाना बाकी क्या रहा। तब मन गाएगा प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, तो वो तब भी नहीं अब से भी शुरू है और तब भी कायम रहेगा। तो इतना सुंदर हमें आज के मिलन से लाभ लेना है, हम खुद बाबा का आह्वान करें। घर में भी जब किसी को निमंत्रण देना होता है तो हम उनको बुलाते हैं ना, खास आइए, थोड़ा देखते आने में लेट हुआ है फोन उठाते हैं, अरे भाई आप निकले हो या नहीं निकले हो, आपने बोला था इतने बजे आएंगे अभी तक पहुंचे नहीं, अरे रास्ते में हो, ऐसा होता है ना। तो हम भी, क्योंकि जितना निमंत्रण देने वाले की अंदर में वो निमंत्रण के जिसको निमंत्रण दिया उसके प्रति भावना होती है, उतना वो सामने वाले व्यक्ति को आने के लिए भी उमंग आता है। तो बाबा को ऊपर से आने के लिए नीचे उमंग मिलेगा किसके आधार से, हमारे आह्वान के आधार से, हमारी प्रेम की डोरी हम जितनी जोर से खींचेंगे ना नीचे उतना जल्दी नीचे उतर के आएगा। तो देखो इतनी बड़ी हस्ती कहता है मैं भी तुम्हारी प्रेम की डोरी में नीचे खींचा चला आता हूँ, जो निराकार है हमारे जैसा साकार बन जाता है। तो ये साकार के दिन ही हमारे अंतर मन में गहरी छाप छोड़ते हैं कि जिसके आधार से ही नेक्स्ट मिलन तक हम उस उमंग और उत्साह में चलते रहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनके लिए तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, लेकिन जो नेक्स्ट माना फर्स्ट टर्न कर चुके हैं, बहुत बार मिल चुके हैं, वो बहुत बार के अनुभव को और गहरा करने का ये स्वर्णिम अवसर है, तो इसका हम पूरा लाभ उठाएंगे। बाकी अगर फर्स्ट टाइमर्स या किसी और को कोई प्रश्न हो बाप दादा मिलन से संबंधित तो पूछ सकते हैं। कृष्ण ने यही लिखा ना, नहीं उसको लिखा, उद्धव को लेटर लिख के दिया और मन की दशा बताई कृष्ण ने उसमें कि गोपियां तुम्हारे बिना मेरा भी यहाँ मन नहीं लगता है करके, और उधर जाके जब उनको पत्र दिया गोपियों को तो गोपियां भी, क्योंकि उद्धव को भले कृष्ण ने पत्र दिया प्रेम भरा, लेकिन उद्धव की विशेषता बताई ना क्या था, वो ज्ञानी था तो ज्ञान बांटना शुरू कर दिया उसने, और गोपियों को वो नहीं चाहिए था, गोपियों को चाहिए था मेरे कृष्ण की बातें। तो जब उन्होंने देखा कि गोपियों को इस ज्ञान से कोई मतलब नहीं और ही उनके प्रेम को वो देख रहा था और कृष्ण के विरह में वो कैसे पागल सी हो रही है, वो जब उसने देखा तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तब उसने उनको नतमस्तक किया, धन्य है तुम्हारा प्रेम। और तब से उसके जीवन में भी वो प्रेम में ज्ञान आया, वरना वो सूखा ज्ञान था उसके जीवन में। तो वो है कि कृष्ण भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ गोपियां कृष्ण के विरह में तड़फ रही थी, कृष्ण भी गोपियों के विरह में तड़प रहा था। तभी तो बाबा कहता है, बाबा भी आकर दिल कैसे जीतता है, बच्चों मेरा भी मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना, बोलता है तो बाबा। वैसे भी देखा जाए अगर हम बच्चे उसके ना हो वो क्या करे, क्या क्या करेगा। इसीलिए देखो लौकिक में भी जिस माँ बाप को बच्चे नहीं होते ना तरसते हैं वो लोग कि अगर बच्चा ही नहीं तो हम करें क्या दो जन बैठ के। क्योंकि बच्चा है तो उस बहाने गृहस्थी आगे बढ़ती रहती है ना। आज ये जन्म लेगा उसके लिए ये प्रबंध करना है, थोड़ा बड़ा होगा ये प्रबंध करना है, तो आप उसमें एंगेज हो। अगर वो है ही नहीं तो करे तो क्या करे, हम दो जन सिर्फ कमाए और खाए बस यही करे क्या, ऐसा होता है ना। तो उस परमात्मा को भी अगर हम बच्चे नहीं है तो करे तो क्या करे बैठ के। और इसीलिए तो कई बार वो कहता है तुम जब पतित बनो तब तो मैं आऊ, जब तक तुम पवित्र थे तो मेरा रोल ही नहीं शुरू हो रहा था दो युगों तक। तो फिर द्वापर में जब तुम थोड़े थोड़े पतित बने, पवित्रता गवाई, तो कम से कम तुमने मेरी भक्ति करना शुरू की। तो पता चल रहा है ना कि दोनों भी एक दूसरे के बिना जैसे कि बेचैन है, उसको हमारे बिना चैन नहीं पड़ रहा है और हमको उसके बिना चैन नहीं पड़ रहा। यही तो सच्चा प्यार है। संबंधों में भी प्रेम अच्छे संबंध किसको कहे जाते हैं, जैसे हवा भी वेंटिलेशन भी, प्रॉपर वेंटिलेशन कौन सा होता है कि इधर की खिड़की से हवा आए और इधर की खिड़की से बाहर चली जाए, फिर इधर की खिड़की से हवा आए और इधर की खिड़की से बाहर चली जाए, इसको प्रॉपर वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन इज द प्रॉपर वेंटिलेशन। ऐसे ही संबंधों में भी इधर इधर के प्रति भावनाएं उमड़े और उधर भी इधर के प्रति भावनाएं हृदय में उमड़े, तभी तो सब मिलान होगा ना। उसकी भावना इसके प्रति जो आ रही वो यहाँ तक ट्रैवल करके जाएगी, उसकी भावनाएं जो उसके प्रति वो भी ट्रैवलिंग करके जाएगी, तो दोनों आपस में मिलेंगे ना। अब फोन कैसे काम करता है, ऐसे ही तो करता है ना। हमने घंटी बजाई उसको आवाज गई ना, तो उसने भी उठाया, कोई मुझे याद कर रहा है, देखे तो सही कौन याद कर रहा है। और आजकल तो मोबाइल में नाम लिख के आ जाता है तुरंत, तो हम पता चल जाता है कौन मुझे याद कर रहा है ना। तो दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें भगवान की जरूरत है, लेकिन भगवान को भी हमारी जरूरत है। बिना बच्चों के बाप का नाम रोशन होगा भी तो कैसे होगा। बात तो सही है, मैं चला नहीं, लेकिन इसमें एक बात है। कई बार हाँ नहीं, देखो कई बार क्या होता है, हम भगवान को जब एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं ना, तब हमको ऐसा लगता है कि इसका मतलब भगवान भी स्वार्थी हुआ ना। जैसे हम कहते हैं ना, वो कहता है तुम मेरे से प्यार करोगे तो मैं तुम्हारा प्यार तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो अगर हम उस भगवान को ऐसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं ना, तो ये मन में आ जाता है कि इसका मतलब भगवान भी स्वार्थी है। परंतु वो व्यक्ति नहीं है, वो तो एक सूक्ष्म हस्ती है, वो तो एक एनर्जी है, वो तो एक ऊर्जा है। अब देखो ना, रेडियो के ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं ना, उसमें से डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर हवा में छोड़ दिया जाता है। अब अगर आपको चाहिए तो अपने रिसीवर सेट की ट्यूनिंग करो उस फ्रिक्वेंसी पर, वरना अगर आपने ट्यूनिंग नहीं की तो वाइब्रेशन वहीं पर खड़े हैं, आपके दरवाजे तक ही खड़े हैं। आपका जो रिसीवर पड़ा वहीं तक खड़े है, वो सिर्फ ट्यूनिंग नहीं किया है ना। तो अभी इसमें दोष किसका, हम बोले कि वाइब्रेशन का दोष है। तो वो इसलिए ने बताया ना कि हम लोग फिजिकल रूप में देखते हैं ना, वो फिजिकल है नहीं, वो तो एक सूक्ष्म एनर्जी है। तो इसलिए उस रूप में देखेंगे ना तो ये भी जो मन में आता है ना, तो फिर तो भगवान भी स्वार्थी हुआ। वो नहीं बोल सकते तब, ये तब तक बोल सकते हैं जब तक हम उसको अपने जैसा एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए क्यों बाबा कहता है, तुम जहां याद करो, जब याद करो, जिस रूप में याद करो, मैं वहीं खड़ा हूं। तुम याद करोगे तो मैं साथी हूं, तुम याद नहीं करोगे तो मैं साक्षी हूं। तो यही तो होता है, टावर से वाइब्रेशन आए हुए होते हैं, आप ट्यूनिंग करो तो आप सुनते हो, देखते हो, ट्यूनिंग नहीं करो तो साक्षी होकर वाइब्रेशन वहीं खड़ा हुआ है, वहीं खड़े रहते हैं ना वाइब्रेशन। ऐसे थोड़ी कि आप तब आप बहुत दूर थे और तब आपके पास आ जाएंगे ट्यूनिंग करेंगे, तो नहीं, वो वहीं खड़े हैं। सिर्फ ट्यूनिंग कर लो तो हो जाएगा। तो साथी और साक्षी का भी भाव तब समझ में आता है जब उसको हम सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में देखते हैं। अगर व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो फिर तब यही आ जाएगा, तो ये भी तो स्वार्थी हुआ। व्यक्तियों को तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, तुमने मेरे को साथ थोड़ी दिया जो मैं तुमको साथ दूं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो फिर हम बोलते, भगवान भी अगर ऐसे करता है तो भगवान भी हमारा जैसा ही तो हो गया स्वार्थी। परंतु भगवान हमारे जैसा साकार शरीर वाला व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए, हम साकार में, हम भी उसके जैसे निराकार आत्माएं, उसी के घर से पवित्र रूप में निकलते हैं। इस देह के बंधन में रहकर अपवित्र हो जाते हैं, तो हमें समझाने के लिए उसको वो साकार रूप लेना पड़ता है, हमें समझाने के लिए लेना पड़ता है। और इसीलिए उस टेम्पररी टाइम में वो उधार लेता है, हमारे जैसे माँ के गर्भ में नहीं जाता है ना, वो उधार वो भी हमारे खातिर ले रहा है कि इनको समझाना है तो मुझे इनके लेवल तक आना पड़ेगा। और हमारे लेवल पर आने के लिए वो दिखाता है कि मैं भी देखो तुम्हारे जैसे दो आंख वाला हूं। हाँ, दोनों कहां कंबाइंड आते हैं, दोनों, दो बिंदु भी नहीं देखना है, एक ही मर्ज है ना, दोनों प्रकाश है ना दोनों, और वो भी पवित्र है ना, माना ब्रह्मा बाबा परफेक्ट हो गए ना, तो दोनों साथ साथ में बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश मिक्स हो जाएगा ना। और एक बात बताना चाहेंगे कि छोटी छोटी इच्छाएं भी नहीं रखना कि बाबा मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मेरे पति को ठीक कर देना, या मेरा ये काम ठीक कर देना, आज करेंसी की जो प्रॉब्लम चल रही है। छोटी छोटी इच्छाएं भी नहीं, क्यों, परमात्मा जैसे आज सूर्य इतना शक्तिशाली है, इतनी रोशनी वाला है कि काली घनी अंधेरी रात को प्रकाश वाले दिन में बदल देता है, इतना पावरफुल है। लेकिन हर एक की अपनी शक्ति का एक दायरा होता है। भले सूर्य इतना शक्तिशाली है कि सारे संसार में जहां काली घनी रात्रि बनी हुई है उसको रोशन कर देता है आते ही, लेकिन ऐसा शक्तिशाली सूर्य भी आपको बिल्डिंग बना के नहीं दे सकता है, उसका अपना दायरा है। ठीक ऐसे ही भगवान के सामने छोटी छोटी इच्छाएं रखने की जरूरत नहीं है, भगवान इसको पावरफुल बना देगा। और अगर ये पावरफुल है तो हम क्या कहते हैं, मन जीते जगत जीत, अगर मन है चंगा तो कठौती में है गंगा। तो ये पावरफुल हो जाए ना, फिर दुनिया की जो भी बातें इस पावरफुल मन के साथ, पावरफुल बुद्धि के साथ हम खुद कर सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए, मैं इसको भर लूं, और इसको भर लूं तो ये पूरा खाली हो ना। अगर व्यर्थ संकल्पों से भरा होगा, एक तो कहते हैं ना कि शेरनी का दूध उसके भी वाइब्रेशन, उसकी भी शक्ति कौन से पात्र में ठहरेंगे? जब ये उतना क्लीन होगा ना, और क्लीन होगा मतलब ही ना तो संशय के विचार चले, ना तो व्यर्थ के विचार चले, ना तो कोई निगेटिव तेरी मेरी के विचार चले, और ना ही कोई इच्छाओं के विचार चले, तब जाके ये क्लीन होगा। विचार चले तो ओहो, 5000 तक, सालों तक जिस पिता से हम बिछड़ के रहे, वो पिता आज मेरे से मिलने फिर से आ रहा है, मेरी झोली भरने आ रहा है, वो मेरा मुखड़ा देखने आ रहा है, वो भी तो उत्सुक है मैं अपने बच्चों को देखूं। सारा संसार जिसको याद करता है, वो इतना सर्वशक्तिमान आज मेरे से मुलाकात करने आ रहा है, उसके जो खजाने हैं वो मेरे को शेयर करने के लिए आ रहा है। ऐसे उमंग वाले विचारों में हम मन को डुबोए रखें, और कोई विचारों को नहीं, तब जाके वो मेरा मन बुद्धि आत्मा रूपी गागर भरेगी। वरना सागर तो अथाह है, लेकिन अगर आपकी गागर की साइज बहुत छोटी होगी और डुबाएंगे ना, तो कहेंगे भले कि मैं गागर भर के आई हूं, पर उसमें कितनी जगह थी। वो भी कह रहा है मैं गागर भर के आ रहा, ये भी कह रही मैं गागर, लेकिन उसकी गागर में तो 1 लीटर गया, उसकी गागर भी भरी लेकिन आधे लीटर में भर गई उसकी गागर। तो ऐसे हो सकता है ना? और पहले ही अगर बहुत कुछ भरा होगा तो वो भरने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एकाग्र ट्यूनिंग नहीं होगी ना। फिर ट्यूनिंग नहीं होगी तो भरेगी कहां? फिर कहेंगे भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो इतना दूर से चलकर आए हैं हम कि भगवान से झोली भरने जा रहे हैं, और उस हॉल में जब बैठे तो इधर उधर के विचार चला दिए तो झोली पूरी भरेगी ही नहीं। यही तो समय है, भाग्य से भाग्य लुटाने वाला लुटा रहा है, देने वाला दे रहा है, जितना भरना चाहो उतना भर लो। ये भर जाएगा ना, तो इस भरे हुए से सब कुछ कर सकते हैं। मेरे पास अगर 50,000 का चेक हो ना, तो मैं जो चाहिए वो खरीद के ला सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे बहुत सारी चीजों में से जो चाहिए था, सिर्फ किसी ने एक चीज लाके दी, तो बाकी चीज तो अभी भी पेंडिंग में पड़ी रहेगी ना। लेकिन किसी ने एक बहुत बड़ा चेक दे दिया, ठीक है मैं अपने आप जो जो चाहिए मैं कर लूंगा ना अपने आप, तो बहुत बड़ा चेक देने आ रहा है। हम छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसे, इसको शक्तिशाली बना लेंगे, इस शक्तिशाली मन से सबको ठीक कर लेंगे, तन को भी ठीक कर लेंगे, संबंधों को भी ठीक कर लेंगे, जीवन में आने वाली परिस्थितियों को भी ठीक कर लेंगे। तभी कहा मन जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठोती में है गंगा। मन पावरफुल है तो पहाड़ भी राई बन जाती है, अगर मन पावरफुल नहीं है तो फिर रुई राई तो क्या, रुई भी पहाड़ लगने लगती है। तो इसलिए छोटी छोटी इच्छाओं से भी अपने आप को परे रखना, व्यर्थ से तो परे रखना ही है, संशय से भी अपने आप को परे रखना है, नेगेटिविटी से भी अपने आप को परे रखना है, इसको उसको देखने से भी परे रखना है, छोटी छोटी इच्छाओं से भी अपने आप को परे रखना है। बस मैं आई हूँ ये गागर को डुबा के उसमें भर लेना है मुझे, यही मेरा लक्ष्य हो। ओम शांति। हाँ चेक से तो कितना भी ले सकते हैं ना, जो चाहिए वो खरीद सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? तो एक तृप्ति लेकर हम लौटेंगे आज शाम को। हर बार बाबा मिलता है, लेकिन हर बार का मिलन एक नया मिलन लगता है। हर बार बाबा का वो प्रेम भरा रूप देखते हैं, हर बार वो रूप एक नया लगता है। हर बार वो आनंद का जो रस हम अनुभव करते हैं, वो हर बार अलग लगता है, और हर बार मन को एक अलग ही संतुष्टि का अनुभव होता है। इसलिए जब भी बाबा से मिलके आते, अरे बाबा ने भले कम बोला लेकिन बहुत भरपूर किया, बाबा का रूप बहुत प्यार भरा था, बोलते हैं ना ऐसे, तो हर बार हर बार नया, मिलन भी नया, रूप भी नया, रस भी नया और अंदर में हृदय में तृप्ति भी एक नई प्रकार की। और जहाँ नवीनता है वही तो जीवन है, वही तो जीवन है, नवीनता का ही नाम तो जीवन है ना। तो वो ऐसा हमारे जीवन में एक नवीनता भरने के लिए आया है, तो उस नवीनता को हम अवश्य ही उठाएंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है? तृप्ति हो गई? हाँ, बहुत अच्छी से मनाएंगे ना मिलन। ठीक है, यहाँ पूरा करते हैं अभी। ओम शांति।